आज के इस सेशन में हम आए हुए सभी अनुभवी भाई बहनों का शांतिवन के प्रांगण में डायमंड हॉल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि जयंती बहन ने बताया कि आज के इस सेशन का जो विषय है वह है श्रीमत का महत्व। हम सभी बाबा के बच्चे श्रीमत पर तो चलते ही हैं, लेकिन फिर भी कई बार चलते चलते कई बातें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते कि हम क्या श्रीमत है, उस पर हम चल रहे हैं पूरा या नहीं चल रहे हैं। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों का गहराई से जवाब देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है हमारी आदरणीय आशा दीदी जी। तो आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हम आशा दीदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हार्दिक स्वागत है आदरणीय आशा दीदी आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि बाबा रोज रोज हमें कहते हैं कि बच्चे आप श्रीमत पर चलो, श्रीमत भगवत गीता में भी श्रीमत का बहुत गायन आया है और शायद इसी कारण से वह पुस्तक सर्वोत्तम भी मानी गई है। तो श्रीमत एक्चुअली है क्या? और साथ साथ कई बार बहने क्लासेस के अंदर ये बात भी सुनाती हैं कि ये हमारी नियम है, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी श्रीमत है। तो क्या इन तीनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है? ये दो प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत में।
ओम शांति। श्रीमत का अर्थ जो बाबा ने बताया है वो है सर्वश्रेष्ठ मत राय। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और नई दुनिया की स्थापना हेतु बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। सत्युग से लेकर के कलयुग अंत तक हम अपनी मत पर चले, मन मत जिसको कहें, पर मत कहें, जन मत कहें, गुरुओं की मत कहें, शास्त्रों की मत कहें, लेकिन श्री मत हमें उपलब्ध नहीं थी। उसका नतीजा क्या हुआ? सतो प्रधान से हम बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये बाबा का काम है। कौन कर सकता है? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिससे ऊपर और कोई नहीं। तो बाबा हम बच्चों को वह राय देते हैं जिससे हमारा जीवन बदल जाता है और जो श्री का टाइटल, श्रीमती का टाइटल हमारा गुम हो जाता है, वो टाइटल श्रेष्ठ मत पर चलने से हमें उपलब्ध होता है। श्रीमत है शिव बाबा के श्री मुख से निकली हुई एडवाइस। ये मेन अंतर है। बाबा का श्री मुख कौन सा है? ब्रह्मा। जो एडवाइस बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दी, वो है श्रीमत। दूसरे शब्दों में, प्लेन शब्दों में अगर मैं कहूं तो रोज मुरली जो हम सुनते हैं वो हमारी सॉलिड श्रीमत है। उससे ऊपर और कुछ नहीं है। बाबा ने जो कहना है, जो राय देनी है, वो बाबा श्रीमुख के द्वारा, अपनी श्री वाणी के द्वारा हम बच्चों को देते हैं। और मुरली के अंदर हर प्रकार की बात है। गृहस्थियों के लिए क्या श्रीमत है वो बाबा उसमें बताते हैं, कन्याओं के लिए क्या है वो बाबा उसमें बताते हैं। हमें बारंबार सच्चाई की बात यह है पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहती कि ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए श्रीमत क्या है। बाबा हर बात स्पष्ट रूप से मुरली में बताते हैं। परंतु जो दूसरा प्रश्न आपका था कि कभी कभी मनमत और श्रीमत के बीच में बॉर्डर लाइन बहुत थिन नजर आती है, और कभी कभी परमत में भी हम लोग चले जाते हैं। मनमत जो होगी उसकी निशानी है कि मुझे जो अच्छा लगता होगा, जहां मेरी लीनिंग्स होंगी, जहां मेरे एडिक्शंस होंगे, जहां मेरा लगाव होगा, झुकाव होगा, दबाव होगा, वह मनमत हो जाएगी। मैं उस परिस्थिति में इस तरीके से चलना चाहती हूं। और जो परमत है वो तो स्पष्ट है, दूसरे की राय, जिसका ज्वलंत उदाहरण रामायण है, जो कैकेयी की मत पर मंथरा की मत पर कैकेयी ने डिसीजन लिया, ये परमत का एक ज्वलंत मिसाल है। और जनमत, कभी कभी हम सोचते हैं सारे मेजॉरिटी ऐसे कह रहे हैं तो फिर हमको ऐसा ही करना चाहिए। मेजॉरिटी एक ओर हो, श्रीमत एक ओर हो, हमें श्रीमत का ही पालन करना है। मेजॉरिटी को भी किनारे करना पड़ सकता है। श्रीमत क्या कहती है, बस हमें सटीक रूप से उसके ऊपर चलना है। ठीक है, तो मनमत, परमत, जनमत और इन सब से ऊपर है श्रीमत।
बहुत सुंदर बात निकल करके आई कि श्रीमत भगवान की मत है, और वो मत ऐसी मत है जिससे हम श्रीमती और श्रीमान बन जाते, माना सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। तो एक प्रश्न और बीच में आता है कि जैसे बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, जो हम नियम और मर्यादाओं की बात करते हैं, तो क्या ये नियम और मर्यादाएं भी श्रीमत से ही निकलती हैं?
श्रीमत हमारी पढ़ाई है, और अगर आप इसको थोड़ा गहराई से एनालाइज करना चाहें तो नियम है जो मेरे जन्म को बदल देते हैं। जैसे पहले हम कुछ और प्रकार का जीवन जीते थे, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं हम अपने चार प्रमुख नियमों की धारणा करते हैं। इससे हमारा जीवन बदल जाता है, हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ये है हमारे नियम। और जो मर्यादा है वो सारे दिन की दिनचर्या और व्यवहारिक लाइफ के लिए है। जैसे उदाहरण के रूप से अमृत वेले उठना, गुड मॉर्निंग करना, ये मेरी ईश्वरीय मर्यादा है। प्रतिदिन क्लास में रेगुलर पंक्चुअल होना, पढ़ाई प्रॉपरली पढ़ना, ये ईश्वरीय मर्यादा है, जो मेरे सारे दिन की दिनचर्या को अलौकिक रूप से चलाने के निमित्त है। व्यवहारिक बातें बाबा की बताई हुई वो सब मर्यादाएं हैं। और श्रीमत जो है वो डायरेक्शन है कि बच्चे तुमको ईश्वरीय पढ़ाई प्रतिदिन पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मर्यादा में आ जाएगा। लेकिन पढ़नी है ये इसमें आएगा। तुमको अलौकिक जीवन जीना है तो नियम सारे जो हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये बॉर्डर लाइन आप कर सकते हैं। है तीनों ही बातें हमारे दैनंदिन जीवन से संबंधित, लेकिन श्रीमत एक सॉलिड पिलर है जिससे, जैसे आपने कहा, और चीजें ऑफशूट के रूप से निकलती हैं।
एक दीदी, आपने जो लीनिंग्स की बात की, और ये हम सभी जानते हैं ब्राह्मण होने के नाते से कि ये लीनिंग्स हमारी द्वापर युग से आरंभ होती हैं और धीरे धीरे इसकी परतें इतनी गहरी होती चली जाती हैं। हम जानते भी हैं कि बाबा की क्या श्रीमत है किस समय पर, लेकिन फिर भी हम कई बार श्रीमत को इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि समय भी ऐसा चल रहा है, हम चाहते भी हैं हम उच्च पद पाएं, लास्ट सो फास्ट भी जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार जानते हुए पहचानते हुए भी उस पर नहीं चल पाते। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है?
मेरा कोई सुझाव नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। हम श्रीमत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो श्रीमत है उसका पालन करना है। अब अंडर प्रेशर्स आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण है। श्रीमत मैं नहीं समझती ऐसी कोई होती है जिसका पालन हम न कर सकें। पहली बात इस संदर्भ में मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि बाबा इंडिविजुअली भी श्रीमत देते थे, लेकिन किन आत्माओं को देते थे? जो श्रीमत का पालन कर सकें। मान लीजिए बाबा किसी परिवार को कहता है, बच्चे आप यहां से शिफ्ट होकर के बेंगलोर चले जाओ। अब उस परिवार में अगर ताकत होगी उस बच्चे में, तब तो वो जाएगा और उस पालन किया तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर उसमें वो ताकत नहीं है तो बाबा ऐसी आत्माओं को फिर ऐसा ऑर्डर, ऐसे श्रीमत देते ही नहीं थे, क्योंकि श्रीमत उल्लंघन करने का बोझ चढ़ता है और वो न कर सके तो डबल बोझ है। इसलिए श्रीमत जो है, जो आपने प्रश्न पूछा उसमें मैं यही कहूंगी कि श्रीमत के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो हमारी लीनिंग्स हैं, लगाव हैं, खिंचाव हैं, ये मेरी अपनी कमजोरियों के कारण है। और अगर मैं बहुत स्ट्रांग बाबा की पढ़ाई में हूं और बाबा की मुरली मेरा संबल है, बाबा के दिल में मुझे जगह बनानी है ना कि इंसान के, जब उस तरीके से मैं तोलती हूं तो श्रीमत से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप ऑटोमेटिकली नेचुरली श्रीमत का पालन कर लेंगे और सब चीजों को आप किनारे कर देंगे।
दीदी, एक बात मन में यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर परिवार में रहने वाले, घरों में रहने वाले भी बैठे और प्रोफेशनल्स भी बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल्स का रूटीन ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अमृत वेले उठने की बात है, बाबा की श्रीमत है और हम सब जानते भी और पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार रूटीन ऐसा होता है कि हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो कई बार उसका असर शरीर पर आने लगता है कि हम अपने आप को ज्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर भाई बहनों को क्या करना चाहिए? या मानो शुद्ध भोजन की बात है, ऐसी ऐसी बातों में कहाँ एडजस्ट करें और कितना करें और कैसे करें?
देखिए,
या बड़ों से राय लें, जैसे आपने कहा कि बाबा थे तो बाबा कहा ही नहीं करते थे, तो इस समय में वो क्या करें?
दोनों बातें करें, अपनी परिस्थिति अपनी टीचर इंचार्ज को बताएं, टीचर इंचार्ज, क्योंकि आपस में एक दूसरे के अंदर जितनी ताकत होगी उतना ही तो बताएंगे ना, लेकिन जो टीचर इंचार्ज है वो उनकी बैकग्राउंड को जानता है और बैकग्राउंड को जानते हुए वो उन्हें एडवाइस दे सकता है। लेकिन ये बात याद रहे, टीचर की एडवाइस है, टीचर की श्रीमत नहीं है। श्रीमत किसी मनुष्य आत्मा की नहीं होती, श्रीमत है ही शिव बाबा की। कई बार मैं भाई बहनों के मुख से सुनती हूं, हमारी टीचर ने ये श्रीमत दी है, तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराती हूं, हंसती हूं कि टीचर की श्रीमत कभी नहीं होती, होती है श्रीमत तो शिव बाबा की होती है जो मुरली में आती है। टीचर हमें एडवाइस कर रही है, अपनी राय दे रही है, हम उसको उस रूप से सम्मान दें। आज बड़ा हमें कोई राय देता है, कोई अनुभवी राय देता है, तो हम उसको महत्व देते हैं ना। तो टीचर भी मुझे अपने जीवन के अनुभव से, बड़ों के अनुभव से राय देती है जिसका मुझे सम्मान करना है। अब जो आपने प्रोफेशनल्स की बात कही, ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेशनल्स 20-20 घंटे प्रतिदिन व्यस्त रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। 16 घंटे होगा, 12 घंटे होगा, मैं मान सकती हूं, ज्यादातर तो 8 घंटे ही होते हैं। ठीक है, उनके कुछ ऐसे वर्किंग आवर्स हैं जो मॉर्निंग आवर्स उनके वर्किंग आवर्स में जा रहे हैं, उसको वो अवॉइड कर लें। 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद तो उठ सकते हैं या उससे पूर्व उठ सकते हैं, उसके बाद वो अपनी बॉडी को रेस्ट अवश्य दें, क्योंकि ये कलयुगी तमो प्रधान हमारी शरीर है और इसको प्रॉपर रेस्ट देना अनिवार्य है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि हम श्रद्धापूर्वक बाबा की श्रीमत समझकर जैसा बाबा ने कहा वो हम करते हैं, बाबा हमें एक्स्ट्रा ताकत देता है, जो हमारा शरीर भी जो है बाबा उसकी केयर करता है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक होता है आत्मबल, दूसरा होता है योग बल, और तीसरा होता है परमात्म बल। तो एक बार दादी जानकी ने कहा था कि आप लोग परमात्म बल का उपयोग नहीं करते हो। हमने कहा दादी योग तो करते हैं, कहते नहीं, परमात्मा से शक्ति लेना वो आप लोग नहीं करते हो। दादी वो कैसे ले, तो उन्होंने बताया मानो आपके अंदर इतना करने की स्टैमिना है, इतना करने की शक्ति है, लेकिन आप हिम्मत करके इतना कर रहे हो तो बाबा भी देखता है मेरा बच्चा अपनी हिम्मत से ज्यादा कर रहा है, तो बाबा भी बच्चे को शक्ति देता है। हमें ये बल यूज में लाना चाहिए और बाबा से ये बल हमको खींचना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनकी बात मानती हूं, उन्हें उस वक्त नहीं अगर कर पा रहे, अपने ऑफिस में है, तो उसके बाद करें, उससे पूर्व करें।
कुछ दीदी ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, आपकी क्या राय इसके बारे में, जैसे कोई बात सामने आ रही है और बाबा से हमें बहुत प्यार है, हम उस धारणा पे चलना भी चाहते हैं, तो बाबा के साथ हम पर्सनली किसी भी टाइम बैठकर बाबा से राय भी तो ले सकते हैं ना।
ले सकते हैं, लेकिन जहां आपने भोजन की शुद्धि की बात कही वहां तो नो कॉम्प्रोमाइज। अमृत वेले के लिए हो सकता है, भोजन की शुद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर वो विद्यार्थी जिनको अन्न की शुद्धि में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो अपनी टीचर इंचार्ज से बात करें, वो उन्हें समाधान दे सकती है। और आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं जो कि कोई नहीं ये कह सकता कि हम खाना नहीं बना सकते, कोई नहीं कह सकता, इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं जो आराम से ये कार्य हो सकता है। और हमें ये काम अपने हाथों से करना ही चाहिए, क्योंकि हम बाबा के योगी बच्चे हैं, जो योगियों का भोजन है वो दुनिया वाले क्या बनाएंगे, इसलिए अपना भोजन अपने आप बनाएं, योग युक्त स्थिति में बनाएं और उसका साधन बना लें, उनको गाइड किया जा सकता है। ये समस्या ज्यादातर कुमारों के पास आती है, अगर कुमार इस विषय में राय ले लें अपने टीचर इंचार्ज से, समाधान निकल सकता है।
बहुत अच्छी बात है कि बाबा की धारणाओं पर ही हमें स्ट्रांग रहने में हमें भलाई दिखाई देती है। दीदी, इसी से संबंधित एक बात और भी सामने आ रही है कि जैसे अक्सर देखने में आता है कि ब्राह्मणों की, भले आपने कहा हमारी ये धारणा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन इस श्रीमत पर देखने में आता है कि भाई बहन कहते हैं कि हाँ हम किसी और के हाथ का तो ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा अपने जो नेबर्स होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, तो वहां पर हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वहां हम इस नियम धारणा में अक्सर देखने में आता है कि 90% ब्राह्मण इस चीज में, तो वहां आपकी क्या राय है?
आज आप 90% ऐसा कह रहे हैं, हमने तो वो वक्त देखा 100% कोई उस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते,
पर आजकल ऐसा
नहीं। देखिए, आपको अपने नियम की कदर अगर है और अपने नियमों पर यदि आपको स्वमान है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग सबने क्रॉस किया है। जब कभी कोई कहते थे वो देखो ये मेरा नियम है, लोग खुद कहते हैं अगर आपका नियम है हम इसे ऑनर करेंगे, हम इसका सम्मान करेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी मनसा कैसी है। अगर मेरी मनसा ढीली होगी ना तो ये सब चीजें मेरे आगे आएंगी, और अगर मेरी मनसा स्ट्रांग होगी, विल पावर होगी, बाबा का साथ होगा, तो ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे भाई बहने 15-15 दिन और अच्छे बड़े डिप्लोमैट्स, अंकल स्टीव, डॉक्टर एलिस माथुर, जो यूनाइटेड नेशंस की डेपुटेशन पर डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे, बाबा ने उन्हें सिखाया खिचड़ी बनाना, पुलाव बनाना, राइस कुकर में बना लेते खा लिया। ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं कर सकते। आजकल तो इतने अच्छे बन गए, मैं खुद 15 दिन विदाउट फूड रही हूं। 15 दिन विदेश टूर पर थी, विदाउट फूड, ओनली फ्रूट्स, जहां चाह है वहां रहा है।
ये बात तो है, हमारा मन ही हमें कमजोर बनाता है। अगर मन से हम पावरफुल हैं,
अगर मैं अपने नियम के प्रति जो बाबा ने मुझे दिया है मैं श्रद्धा भी रखती हूं और उसके प्रति मैं समर्पित भी हूं और उस नियम की मैं वैल्यू को समझती हूं। आज मुझे कोई कहे नॉन वेजिटेरियन फूड खाओ, मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी ना। कोई मुझे कहे प्याज खाओ, खाऊंगी नहीं खाऊंगी ना, क्यों नहीं खाऊंगी, इतनी स्ट्रांग मेरे मन के अंदर है ना। ऐसे जब इस चीज के लिए भी हम इतना स्ट्रांग होते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, ये सब चीजें तो अवेलेबल होती हैं।
So you mean to say that where there is will, there is always a way.
आप एग्री करते हैं? एग्री करते हैं।
जैसे एक बात पहले अभी निकली, परमत की बात निकली। हम सभी जानते हैं कि परमत पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग ऐसा देखने में आता है कि भाई बहन अपने सीनियर्स को देखते हैं, सीनियर्स में सीनियर भाई बहन भी देख सकते हैं, तो उसमें कई बातें, भले हर एक पुरुषार्थी है उनके अंदर कोई ऐसा अवगुण है या कोई ऐसी बात है तो उसको देख करके वो कॉपी करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये भी इस तरह से चलते हैं तो हम चल रहे हैं तो क्या हो गया। और परमत पर जाकर के कई बार अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर वो उनको देखें ना देखें, टीचर से ही राय करें या बाबा की मुरली से ही बातों को स्टडी करके निकालें, क्या करना चाहिए उनको?
बाबा ने एक मुरली में 3-4 बातों के लिए मना किया था, क्वेश्चन, कोटेशन, कमेंट, क्रिटिसिज्म, इन सब चीजों के लिए मना किया था। और खेद की बात है कि हम लोग बड़ों को कोट करते हैं कि बड़े भी तो लिमका ले रहे हैं, हमने लिया तो क्या हुआ। अब इसमें हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, बड़े ले या ना ले, मैंने क्या करना है, मेरी आत्मा तो अलग है ना सबसे, मैंने क्या करना है। और हम ये बात भूल जाते हैं कि बड़ों की बहु काल की तपस्या उनके साथ है। हम तो आज के जन्मे हुए हैं, हमारे में इतना तपस्या का बल कहां है? तपस्या का बल हो तब कोई बात है ना। बड़ों के पास तो तपस्या का बल है जिससे वो किसी भी विघ्न को, किसी भी हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम छोटे भाई बहन बड़ों को कोट करके, कमजोरी मेरे अपने मन की है और कोट बड़ों को कर रही हूं, इससे मेरा डबल नुकसान है। दादी ने, दादी जानकी ने एक बार परमत या पर चिंतन की बात है, वैसे भट्टी कर रहे थे हम लोग, थोड़ी बहने थी और दादी बोल रहे थे, हम लोग बहुत फास्ट लिख रहे थे, तो दादी ने हमसे पूछा कि ये किसके लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? हमने कहा दादी, हम सब टीचर्स बहने थी, हमने कहा दादी दिल्ली जाएंगे ना तो क्लास में भाई बहनों को सुनाएंगे। हमने कोई बुरी बात तो नहीं की, अच्छी बात कर रहे थे, भले का काम कर रहे थे। दादी ने क्या बोला, ये भी परचिंतन है। क्यों? अभी लगेगा ना भाई, अच्छा काम कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, भाई बहनों के लिए ले रहे हैं। दादी कहती है ये भी परचिंतन है, तुम बैठी यहां हो, सुन मेरे से रही हो और याद उनको कर रही हो। तो दादी ने कहा ये क्यों नहीं ख्याल आता कि जो मैं सुनूं उसका स्वरूप बन जाऊं तो जाकर के भाई बहन उस स्वरूप को देखें। नोट्स लेने की बजाय अपने जीवन में ही वो धारणा ऐसी करो ना। तो परमत जो है ये खतरनाक चीज होती है, परमत में हमको कदापि नहीं जाना चाहिए। आप एक दूसरे से अनुभव तो पूछ सकते हो लेकिन मत लेकर के उस अनुसार करना वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं। हम अपने टीचर इंचार्ज को रेफर करें हर बात के लिए, तो आप दादी दीदी को नहीं कह सकते आजकल, वो समय बीत गया, वो पीरियड बीत गया जब हम दादी दीदी के पास बैठ के सब बातों के समाधान ले लेते थे, मम्मा बाबा से सब समाधान लेते थे, मम्मा बाबा सब बातों में गाइड करते थे, वो समय तो नहीं है। लेकिन हमारी टीचर्स बहनें इतनी प्रवीण हैं जो कि ज्ञान योग के आधार से, अनुभव के आधार से प्रॉपरली गाइड कर सकती हैं। तो टीचर इंचार्ज पर हमारा फेथ होना चाहिए, और ये बात मैं जानबूझकर कह रही हूं। आपने जब प्रश्न पूछा था उसी समय स्ट्राइक हुआ कि टीचर पर अगर हमारा फेथ नहीं है तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, एक ट्रेंड आजकल देखने में आ रही है कि अच्छे अच्छे जिनकी लाइफ को आपने 30, 40, 50 इयर्स से देखा है वो क्या हैं आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ कह देता है तो हम उस नए की बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं और जो 40, 50 साल से जिसको आप जानते हैं आप उसको डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये एक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद श्रीमद् भगवद गीता में बताया है उसमें नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप और तीसरी चीज जो कही गई गत संदेह, मेरे संदेह मिट गए। एक होता है संशय और एक होता है संदेह। संशय बड़ी चीज है, संशय बुद्धि विनशंती, लेकिन जो संदेह होता है वह हमें योग युक्त रहने नहीं देता। यहां तूफान चलाता है, बार बार आप अनुमान और डाउट करते हैं, तो आप श्रीमत को धुंधले बादलों के बीच में देख रहे हैं, आपको वो श्रीमत स्पष्ट नजर आएगी ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप बड़े से टीचर इंचार्ज से कनेक्ट करके उनसे राय ले लें।
माना किसी भी हालत में हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि परमत की ओर हमें नहीं जाना है, और हमारी टीचर्स बहनें जो बड़ी हैं उनकी हमें बात की रिस्पेक्ट करनी है, उससे हमें बाबा बल देता है।
और कभी भी बड़ों को कोट नहीं करो, कभी नहीं करो। ये बहुत बचपन में आप लोगों को याद होगा कि अगर किसी बड़े की कोई बात आप पॉइंट आउट करते थे तो टीचर आपको क्या करती थी, कान पकड़ती थी। तो नेवर नेवर, जो बड़ों के जीवन का त्याग है, जो बड़ों के जीवन की तपस्या है, उसकी भेंट में हमने तो इतना भी नहीं किया।
दीदी, इसी के ऊपर हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आपने जानकी दादी जी का मिसाल दिया कि वो परमत यहां तक उसकी ऊंचाई हमें बताती हैं, और आपने बीच में बात करते हुए जिक्र किया तपस्या के बल का। yes. तो वो तपस्या का बल आज के सिनारियों में हम लोग किस तरह से, छोटी छोटी ऐसी बातें कुछ हमें बताएं कि उस तपस्या के बल को हम कैसे जमा करें ताकि हम बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो भी कर पाएं और लासो फास्ट भी जा पाएं।
तपस्या के दो तीन अर्थ। एक तपस्या जिसको सामान्य रूप से हम सब अंडरस्टैंड करते हैं वो है योग युक्त स्थिति, मेरा योग भंग ना हो। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, कदापि मेरा योग भंग ना हो। बाबा के साथ मेरा कम्युनिकेशन और रिलेशन कभी भी टूटे नहीं, एक ये है तपस्या। ठीक है, अगर मेरा योग टूट जाता है तो दो ही प्रकार के टाइटल बाबा ने दिए, योगी और दूसरा भोगी। क्या मैं अपन को भोगी कहलाना चाहती हूं? नहीं। तो मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा जीवन अब पुराना वाला नहीं है, ये मेरा नया जीवन है, फर्स्ट जन्म है, अलौकिक है, मरजीवा है, मुख वंशावली हूं। शिव बाबा ने जन्म दिया है, जब उसका नशा होता है फिर हमारा योग भंग कोई नहीं कर सकता।
योग से नहीं कहलाएंगे ना, वियोगी कहलाएंगे ना।
मैं बता, योग से मेरा भाव ये नहीं है कि आप बैठ करके कोई योग लगा रहे, नहीं। योग का अर्थ है संबंध, लिंक। वो मेरा प्यार बाबा के साथ, वो संबंध मेरा बाबा के साथ कांस्टेंट बना रहे, वो योगी जीवन है, और ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, तपस्या में इसको भी मानती हूं, जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं, तो दृढ़ संकल्प किसी चीज का अगर हम कर लेते हैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे कोई कोई नियम हम पालन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ना भाई इतने सालों की तपस्या है मेरी, और कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो कहते हैं इन्होंने तपस्या भंग कर दी। नहीं, हमारी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। जो हमने दृढ़ संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है, उस पर अडिग रहना है, उसकी परवरिश करना, यह भी तपस्या है। अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर समर्पित रहना, बिना दाएं बाएं देखे, पीछे देखे, आगे देखिए, बिना पीछे देखे, ऊपर नीचे देखे, दाएं बाएं देखे, आप अपने गंतव्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस।
इसके लिए टूट स्नेह का बहुत बड़ा रोल है।
नहीं, सिर्फ ये नहीं, आपकी एम, आपकी एम, आपने ये एम रखी है, उद्देश्य रखा है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने एम की ओर टोटल डेडिकेटेड होता है उसको कुछ नहीं दिखता। बहुत सुंदर मिसाल हम लोग अर्जुन का देते हैं कि पांचों पांडवों का जब टेस्ट लिया गया तो सब पांडवों ने क्या बोला, मैं चिड़िया की आंख देख रहा हूं गुरुजी आपको दे, उन्होंने सोचा गुरुजी की थोड़ी सी महिमा की जाए, तो गुरुजी आपको भी देख रहा हूं, अपने भाइयों को भी देख रहा हूं, तो सबको क्या कहते थे, आ जाओ किनारे, आ जाओ किनारे, आ जाओ किनारे। और जब अर्जुन को कहा, अर्जुन कहता है मैं चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं, और तब वो पास होता है। ऐसे ये हमारी यादगार है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कितने समर्पण भाव से अपने कदम बढ़ाते हैं, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी यादगार है। हम अर्जुन है, दूसरा कोई थोड़ी, ये है तपस्या से भावार्थ।
शायद जो यज्ञ है यहां पर पहुंचा है, शायद उसके पीछे तपस्या का ही बल है बड़ों का।
निस्संदेह हमारी दादियों की तपस्या है, आज हमारी दादियों के त्याग और तपस्या से हमारा जन्म हुआ है। गुलजार दादी कहती हैं, हाँ बजाओ ताली दादियों के लिए। गुलजार दादी की मैं बात सुनाना चाहूंगी। जब अभी दादी कमला नगर में रहते थे, छोटा सा सेंटर था, कोई मदोगिरी भी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत मिलता था अपने प्रति खर्च ही नहीं करते थे। गुलजार दादी सुनाते हैं, एक भाई आम की पेटी ले आया, बहनों आम खाना, तो इन्होंने रख दी, हम मधुबन भेजेंगे, इतनी सी पेटी होगी, मधुबन भेजेंगे। दूसरे दिन वो आया, आम की पेटी वैसी रखी है, तो कहते नहीं ये माउंट आबू भेजेंगे, हम माउंट आबू भेजेंगे। और आप सबको पता है कि इतना बड़ा पेठा आ गया था, सीताफल जिसको बोलते हैं, काशी फल क्या बोलते हो, इतना बड़ा, तो वो तो जो बहनें रहती थी उनके लिए बहुत अधिक था। तो कमल सुंदरी देवता दादी हमारी होती थी एक, उसने कहा ये माउंट आबू जाना चाहिए, और पेठे के ऊपर ही लिख दिया बाप दादा माउंट आबू, और ट्रेन में डाल दिया, और सच में पेठा बाप दादा माउंट आबू को पहुंच गया। सच्ची घटना है। ऐसे ही जो भाई पेटी लेके आए आम की, उसने कहा आप लोग ये खाओ, मैं माउंट आबू के लिए और ले आऊंगा। तब तक दादियों ने उसको नहीं खाया जब तक दूसरा नहीं आया। और गुलजार दादी जो बात सुना रही थी मैं, कहते बाबा का पत्र आता था कि बच्चे आधी रोटी कम खा करके भी बचत करो, और जो पैसा बचे उससे पैम्फलेट छपाओ, पैम्फलेट पर्चे छपाओ और बांटो, सेवा बढ़ाओ। आप सोचो दादियों ने कितना त्याग किया है, खुद न खाकर हम सबके लिए पर्चे छपाए जिससे हम सब पैदा हुए। ये दादियों की तपस्या है। आज भी इनके रोम रोम में बाबा बसता है। आप गुलजार दादी से पूछिए, उनकी तपस्या का मैं प्रमाण दे रही हूं। गुलजार दादी से पूछिए, दादी आप इसको प्यार करते हैं या इसको प्यार करते हैं, तो कहेंगी बाबा को करती हूं। आप उन्हें दो बातें बता रहे हैं, बाबा नहीं बोला, लेकिन कहती बाबा को करती हूं। दादी आप इनके साथ भोजन करेंगे या इनके साथ करेंगे, कल की घटना है, अभी कल ही हुआ ये। दादी आप इनके साथ भोजन करेंगे या इनके साथ भोजन करेंगे, मैं बाबा के साथ भोजन करूं। ये है तपस्या। और इस तपस्या से ही दादियों ने, जिनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, हमारे दिल जीते हैं, दिलों पर राज करती हैं, कोई प्रोफेशनल लेक्चरर्स नहीं है, स्पीकर्स नहीं है, लेकिन जो उनके दो वरदानी बोल हमें छू जाते हैं, वो शायद एक घंटे का भाषण भी ना कर सकता हो। ये तपस्या का फल है। आज जो हम ईश्वरी विश्वविद्यालय का विस्तार देख रहे हैं, ये हमारी दादियों की तपस्या का फल है। और हम सब की जिम्मेवारी है, हम उस तपस्या के बल को पैदा करें, उस तपस्या के बल को बना के रखें। दादियों की ओर से एक चीज मैं कहा करती हूं, हम लाए हैं तूफान से इस यज्ञ को निकाल के, इस यज्ञ को रखना प्यारे भाई बहनों संभाल के, ये हम सबकी जिम्मेवारी है।
दीदी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यज्ञ की बातें सुना रहे हैं, अगर एक दो इस प्रकार के अनुभव और हमें बताएं तो जानकी दादी जी से भी संबंधित
किसी विषय में पूछिए तो मैं बता दूंगी।
दादी की भी हम सुनते हैं 1990 के पास बहुत तबीयत खराब थी, जब ऊपर में हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी 1983 में जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यूनिवर्सल पीस हॉल में ऑर्गेनाइज की थी, और उस समय सुनने में आता था कि जानकी दादी जी की तबीयत काफी खराब है, लेकिन दादी जी का सुनने में आता है कि उन्होंने तपस्या के बल से, बाबा की श्रीमत और बाबा के प्यार से अपने आप को इतना चलाया कि दादी जी हमारे साथ इतनी सेवाएं कर रही हैं कि बात मत पूछो। और एक बार मुझे बात याद भी आती है कि दादी जी जब ORC में आए थे तो दादी जी को हम लोगों ने बोला, जनवरी मास के ठंड के दिन थे, तो दादी क्लास से आने के बाद कहती हैं कि मुझे ना बाबा के कमरे में जाना है, तो कई बहनें साथ थी, उसमें से एक बहन ने बोला कि दादी आप बाबा के कमरे में नहीं जाओ, वहाँ घास है, थोड़ी आपको ठंड लग जाएगी, तो आप बाबा के कमरे में ना जाके वहीं परिवार में बैठ के ही बाबा से मिल लेना। कहती मैं ठीक हूँ नहीं तो जा रही हूँ वहाँ पे।
Very
ये
good.
उनकी कॉन्शियसनेस है।
Yes. दादी जानकी की कमाल है, आज देखने में हमें लगता है कि हमारा विदेश कितना बड़ा, कितना विस्तार को प्राप्त हुआ है, लेकिन दादी जहां रहती थी 96 टेनिसन रोड, वो मैंने देखा है, एक कमरा, बाबा का चित्र, और दादी बाबा के चित्र के सामने बैठ के बाबा से बातें करती थी। आप लोगों को, कितनों को पता भी नहीं होगा, किस त्याग और तपस्या के बल से सेवा हुई है। वहां कोई बेड नहीं था, विदेश में लंदन में ये जैसे दरवाजे होते हैं ना पुराने घरों के, निकाल करके बाहर डाल देते हैं, ऐसे पुराने दरवाजा फट्टा उठा के लेके आए, जिसपे दादी का बेड बनाया और उसको सुलाया। ये हमारी दादी जानकी त्याग और तपस्या की मूर्ति है। हमारी जयंती इंग्लिश जानती थी, जयंती बहन जाती थी लेक्चर देने, क्लास कराने, दादी जानकी पीछे जयंती बहन सहित उनका खाना बनाती थी और खाना खिलाती थी। आज हम भी कहेंगे कि गई है अपना काम तो करके जाए, लेकिन दादी ने ये नहीं सोचा। दादी ने वो परवरिश जो की, वो हड्डी हड्डी जो सेवा की, दादी जानकी ये कहा करते, दादा विश्व किशोर कहते थे कि ज्ञान देना तो बहुतों को आता है, लेकिन हड्डी सेवा करना नहीं आता। हड्डी सेवा किसको कहते हैं, जो रोम रोम में ताकत भर दे। और दादी जानकी बहुत जबरदस्त बाबा ने इनको स्ट्रांग बनाया है। आज आप और हम बीमार हों, हॉल में सब लोग हों, बाबा सबको मिलकर के जाए और मुझे छोड़ जाए, मेरी तरफ दृष्टि भी ना डाले, तो मुझे फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? 100% आएगी। दादी जानकी के साथ ये प्रैक्टिकल घटा। दीदी ने दादी जानकी से पूछा, तुम्हें फीलिंग नहीं आई? दादी जानकी ने कहा, फीलिंग क्यों आएगी, मैं तो बाबा के दिल में पहले ही बैठी हूं। यह है नशा। आमतौर पर भाई बहने अपने स्वमान को छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे कोई सबसे मुस्कुरा के मिली, मेरे से नहीं मिली। ये फीलिंग की जो बीमारी है, ये हमें खोखला कर देती है। बाबा ने इस तरीके से दादी को स्ट्रांग बनाया। दादी जानकी एक बार कहते हैं, प्रेम बहन देहरादून वाली रहते थे दादी के पास, बाबा ने उनको वहां से शिफ्ट किया कहीं और, बाबा ने दादी जानकी ने कहा बाबा को, बाबा मुश्किल से तो एक हैंड तैयार हुआ जो भाषण करता है। बाबा ने क्या किया, मक्खियां मार के एक लिफाफे में डाल के दादी जानकी को भेज दिया, तो बैठ के मक्खियां मार। ये बाबा क्यों करता है, ताकि स्ट्रांग बनाए, पावरफुल बनाए। आज दादी के हाथों से कितने हैंड्स निकले, हम सब दादी की पालना के हैं, कितने हैंड्स है। तो बाबा की बातें, अब बाबा ऐसा अधिकार किसी कमजोर पर रखेगा? नहीं। श्रीमत किसी को ऐसी देगा? नहीं। बाबा ऐसा अधिकार उन पर रखता है जो कि ज्ञान योग में स्ट्रांग होते हैं। एक मिसाल मैं श्रीमत का दूंगी। हमारे एक खन्ना भाई होते थे, रेलवेज में होते थे, पुराने जो बैठे हैं वो उनको जानते हैं। उनके 11 बच्चे थे, अंबाला के थे। बाबा ने उनको कहा, रेलवेज में थे तो बाबा ने उनको कहा, यज्ञ में तेरे जैसे बच्चे की जरूरत है। अभी उनकी कोई जिम्मेवारियां संपन्न नहीं हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा, यज्ञ में तेरे जैसे बच्चे की जरूरत है। खन्ना जी तैयार हो गए, मधुबन आ गए। उनके बच्चे इतने लायक निकले और पूरा खन्ना जी के साथ उन्होंने संबंध रखा एंड तक। ONGC में बहुत ऊंची पोस्ट पर थे सब बच्चे, और जब उन्होंने मधुबन में ही शरीर छोड़ा, इतना अच्छा उनका संबंध उनके साथ भी था और उनके साथ भी। क्यों? बाबा की श्रीमत मिली और उसका पालन किया। हां, इस बात से कोई यूं ना ले ले मन मत से, जी मैं भी अब आ गया, अब मेरा भी बाबा आप ही संभालेगा, ऐसे नहीं है। हर एक के लिए राय दूसरे। बाबा उनकी जन्म पत्री को जानते थे, इसलिए उनको निकाल लिया। ऐसे नहीं कि हम सबके लिए ऐसी राय है, नहीं। हर एक के लिए श्रीमत दूसरी डिफर कर सकती है। ब्रिजमोहन भाई को कहा कि तुमको चाय लेनी पड़ेगी क्योंकि मीटिंग्स हैं, और रमेश भाई को बोला तुमको बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि उनका अपना बिजनेस था। बिजनेस में तुम मालिक हो, वो तो मालिक नहीं है। तो हर एक की जो नबज है वो अलग है, हर एक के लिए दवाई अलग है और हर एक के लिए श्रीमत।
दीदी, लास्ट में हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे छोटा सा, कि यज्ञ को हम सभी चाहते हैं कि बहुत आगे लेकर के जाएं और बाबा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में हम करें, यही हम सबका लक्ष्य है। तो उसके लिए कौन सी एक ऐसी श्रीमत पर हम लोग ज्यादा अटेंशन रखें, ताकि हम लोग बाबा की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी कर सकें और बड़ों की इच्छा को भी पूरा कर सकें?
श्रीमद जिस पर अटेंशन रखना है वो यही है कि श्रीमद जो मिलती है उसका पालन करें, जो श्रीमद मिलती है ना उसका पालन करें। मन मौजी नहीं बनना है, जो मेरे मन को भाए वो मैं करूं, जो मेरे मन को न भाए वो मैं ना करूं, नहीं। जो श्रीमद हमें मिलती है, जो बाबा हमसे चाहता है साक्षात्कार मूर्त बने, अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें, हम नहीं करेंगे तो बताओ भाइयों बहनों, बाबा को कोई दूसरे बच्चे हैं क्या? किसी और प्लैनेट पर दूसरे बच्चे हैं क्या जो प्रत्यक्ष करेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो बाबा के आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी बनना माना एक बार जो बात कही जाती है उसको सुनना, स्वीकार करना, मानना, जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरह पढ़ना। मैं तो ये मानती हूँ ज्ञान और योग में जो प्रवीण है, ज्ञान और योग में जो एक्यूरेट है, उनकी वो एक्यूरेसी हर जगह दिखाई देगी। तो अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दें, ये नहीं मुरली कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी मिस कर दी कभी कुछ कर दिया, नहीं। जो बाबा ने श्रीमत दी, जो बाबा ने नियम बताए, जो बाबा ने मर्यादाएं बताई, अगर सच पूछो हम सब मिलकर के अगर इसका पालन करें तो विवेकानंद ने कहा था 100, हम तो कितने हैं, क्या हम एकदम स्वर्ग धरा पर नहीं ला सकते? हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर के दृढ़ संकल्पी होना होगा कि ये कार्य बाबा का हम बच्चों ने ही संपन्न करना है। और आजकल एक बात मैं सबको कहती हूं, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नहीं, शंकरपेट, अलवरपेट, ये नहीं। हम सबका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस है बाबा का दिल। हम सब कहाँ रहते हैं? कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो तो क्या जवाब देंगे? बाबा का दिल। तो बाबा के दिल में मैं निवास करूं, ऐसी मैंने योग्य बनना है ना। बाबा ऐसे ना कहे भी मेरा मकान खाली करो, आप बैठे रहो मेरे मकान में, बाबा ऐसा बोले। बाबा के दिल में हम रहने वाले हैं, ऐसा हमको अपने आप को बनाना है, ठीक है?
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच में आए। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इस विषय से संबंधित प्रश्न है आपने उनको बहुत अच्छे से सुलझाया। बहुत सी बातें सामने आई हैं कि श्रीमत क्या है, ये भगवान की मत है, इससे ऊंची कोई मत नहीं हो सकती। परमत से हमें बचने की कोशिश करनी है और तपस्या के बल को किसी न किसी तरह से हमें बढ़ाना है, ये हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात जो निकल करके आई कि हम बाबा की प्रत्यक्षता को यदि करना चाहते हैं तो केवल श्रीमत की चर्चा ना करें, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसका हम स्वरूप बन जाएं, उसको अपना जीवन बना लें, तो हम बाबा की प्रत्यक्षता सभी बच्चे सहज कर सकते हैं। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सब ने बहुत उमंग उत्साह से सुना, आप सबका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और समझते हैं कि आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओम शांति।
ओम शांति।